तुम्हें कहां से मालूम हुआ?
मैंने नहीं कहा जानता हूं, सिर्फ उस वक्त जब हमने शादी की थी और मैं दूसरा काम तलाश कर रहा था तो हाजी साहब ने करज की बिल्डिंग का हिसाब किताब मेरे हवाले किया था उसी वक्त।
नाहिद को भी देखा था?
दूर से एक दो बार, लेकिन उससे बात नहीं की थी। अलबत्ता हाजी साहब से उनके ताल्लुकात के बारे में मैं समझ गया था कुछ कुछ। उस दिन जब मैंने हाजिया के साथ उनको देखा था तो मैं समझ गया था।
तुमने कुछ बताया क्यों नहीं?
मैं क्या बताता समीरा, वह वो गुमान की बिना पर हाजी जिंदगी तबाह कर देता, यानी किसी की प्राइवेट जिंदगी क्यों तबाह करता मैं। जब करबला जा रहे थे तो मुझसे कहा था कि मोहतरमा ख्याल रखना, उन्होंने कहा था कि घर का ख्याल रखना। वो कहते थे कि जब मैं नहीं रहता और तुम रहते हो तो मुझे बहुत इत्मीनान रहता है।
सासान, मुर्तजा साहब हमें इसी वजह से यहाँ लेकर आए थे क्योंकि जब वो घर नहीं रहते और हाजिया साहब अकेले रहते हम उनका ख्याल रखें।
माफ कीजिएगा, ये बात किसने कही?
खुद नाहिद ने यह बात बताई थी। बेचारी हाजिया साहिबा, जब उनको मालूम होगा तो उनको बहुत बुरा लगेगा।
वो कैसे समझेंगी?
हमने हाजिया साहिबा का नमक खाया है।
क्या हमने हाजिया साहिबा के घर में कोई बुरा काम किया है?
मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं हाजिया साहिबा की आंखों में देखूं और उनसे कुछ छुपाऊं।
अगर मलिया साहिबा को मालूम हो जाए तो उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचेगी।
जी नहीं, अगर हम सच्चाई से उन्हें बता दें तो कुछ नहीं होगा।
तुम्हें यकीन है?
नहीं,
जब तुम्हें इत्मीनान नहीं है तो छोड़ो दूसरों की जिंदगी से मतलब।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। माफ़ कीजिएगा, मैंने नींद से उठा दिया लगता
है। नहीं, नाश्ता कर रही थी। क्या बात हो गई?
कुछ नहीं, गुज़श्ता रात मेरा एक प्रोग्राम था, मैंने यास और नाउमीदी के बारे में गुफ्तगू की थी। ये बात कि मायूसी किस हद तक इंसान की ज़िंदगी बदल देती है, कि वो गलत फैसले करने लगता है और गोशा नशीन हो जाता है।
मैंने गुज़श्ता रात आपका प्रोग्राम नहीं सुना, आप यही कहने आए हैं?
जी नहीं, मैं आया था कि आपको अपने ठोस फैसले से आगाह करूं और अपने फैसले पर बाकी रहूंगा।
अच्छा,
मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको खुश रखने की भरपूर कोशिश करूंगा।
मैंने फैसला कर लिया है, मेरा प्रोग्राम वही है जो मैंने आपको बताया।
मैं जानता हूं कि मुमकिन है आप मुझसे नाराज हों, लेकिन यकीन माने मुझ में बदलाव आ रहा है और ये तब्दीली बगैर वजह की नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम रिश्ते इज़्ज़वाज में मुंसलिक हो सकते हैं, साथ मिलकर आपकी मुश्किल हल करेंगे। तराना साहिबा मत जाए, मेहरबानी करें।
नहीं हो सकता, मेरे वालिदैन बहुत खुश हैं, वो भी मुद्दतों बाद। मैं अपना प्रोग्राम नहीं बदल सकती। मैं ये नहीं चाहती कि लोग मुझे गैर मुस्तकिल मिजाज समझें। आज मेरी रात फ्लाइट है।
आज रात तो मेरा क्या होगा? यानी वाकई मेरे जज्बात आपके लिए अहमियत नहीं रखते?
वाज़ह सी बात है कि अहमियत रखते हैं। अगर अहमियत ना रखते तो मैं इतना ज्यादा वक्त हम लोगों की इज़्ज़त जिंदगी के बारे में ना सोचती।
इसका क्या फायदा जब आपने जाने का फैसला कर लिया और जा रही है?
हमने फैसला किया था कि जो काम भी हम लोगों के फायदे में होगा करें। अभी सफर मेरे फायदे में है और आपके फायदे में भी है।
हाँ ठीक है, यहीं लगा दो इसे। यहाँ पर खाने पीने की चीजों के स्टॉल लगाएं। मैंने यहाँ पर कई अदर फ्रिज रखे हैं, जो चीजें खराब होने वाली उन्हें फ्रिज में रख दें।
बहुत अच्छी बात है, आपने तो हर चीज को मद्देनजर रखा
जी
है।
हाँ, हमने जामे मनसूबा बनाया है मोहतरमा।
इंशाल्लाह। कैसी हो मरियम, तुम्हारी तबीयत ठीक है?
जी ठीक हूँ।
मरियम बहुत अच्छी और काम की खातून है। मैंने उससे वादा किया है कि अगर इसी तरह काम करती रही तो उसे यहीं रोक लूंगी।
वो माँ जिसका हदफ अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाना हो वो बहुत अच्छा काम करती है।
शमसियान साहिबा।
जी आ रही हूँ, माफ कीजिए मैं अभी आ रही हूँ।
तुमने बहराम साहब से बात की, उन्हें बताया कि काम कर रही हो?
जी अभी वक्त नहीं मिला, यहाँ पर बहुत ज्यादा मसरूफ हूँ, मैं प्रोग्राम के बाद उन्हें बताऊंगी।
तय तो ये था कि जल्द ही उन्हें बता दोगी।
आप परेशान न होइए हाजिया साहिबा, बहराम के लिए मेरा होना या ना होना सब बराबर है।
बहरहाल वो शरण तुम्हारे शोहर हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए।
मैं उन्हें कल बता दूंगी।
कल परसों में ना बदल जाए।
जी जरूर।
जीते रहो, खुश रहो।
सलामुअलैकुम हाजिया साहिबा।
वालेकुम सलाम, कैसी हो तुम?
शुक्रिया।
अरे मैंने आपको बताया था कि म्युनिसिपल काउंसिल की एक खातून रुकन हमारी तकरीब में शिरकत कर रही हैं।
अच्छा?
जी हाँ।
बहुत अच्छी बात है, मीडिया के लिहाज से भी अच्छा है।
अलबत्ता उन्होंने कहा है कि वो इस जलसे में आपसे मुलाकात करने के लिए आ रही हैं, उन्होंने कई मरतबा आपको फ़ोन मिलाया लेकिन आप नहीं मिली।
अरे ये तो गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं, इसी जलसे में इंशाल्लाह उनसे मिल लूँगी और माफ़ी मांग लूँगी।
उनके साथ और भी लोग आएंगे।
आए भाई सर आँखों पर।
बेटी इसे यहाँ से उठा लो।
तुम्हारे हाथ का खिलौना नहीं हूँ।
इस्माइल तुमसे कह रही हूँ वापस आ जाओ।
वापस क्यों जाए?
मैं तुम्हारी दवाई घर भूल आई हूँ।
गुलनास तुमने आजिज कर दिया है मुझे, बस करो गुलनास।
और हजरात, हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद, हमें खुशी है कि आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इन दिनों एक खबर गर्दिश कर रही है कि साइंसदान ऐसी दवा बना रहे हैं जिससे बुरी यादें जहन से साफ की जा सकती हैं। मैं इस खबर की तस्दीक नहीं कर सकता चूंकि ये गर्दिश कर रही है, लिहाजा आपको उससे बस हम आगाह कर रहे हैं। आज रात हमारी मेहमान है मोहतरमा डॉक्टर आबदी साहिबा, वो माहिर नफ्सियात हैं। इसके अलावा प्रोग्राम
जरा ये बताओ तुम कब से रेडियो सुनने लगे हो?
मैं हमेशा गाड़ी चलाते वक्त रेडियो सुनता हूँ।
तो फिर ये थैलावर सीडिया किसकी है?
जब भी रेडियो से दिल उचाट हो जाता है तो सीडी लगा देता हूँ और कोई नगमा सुनता हूँ।
मुझे तो रेडियो बिल्कुल नहीं पसंद है।
अच्छा,
आप भी ड्राइविंग पर ध्यान दीजिए और थोड़ा तेज चलाइए।
मैं आहिस्ता चला रहा हूँ।
आप जिस रफ्तार से चला रहे हैं बच्चे का स्ट्रॉलर भी आपसे आगे निकल जाएगा।
बस यही एक कमी नहीं थी मुझमें, लेकिन अब ये भी मेरी कमियों में बढ़ गई है।
इत्मीनान रखिए, अगर नक्स ना होता तो मैं हरगिज ना कहती।
ये लीजिए, तेज चला रहा हूँ सिर्फ आपकी खातिर। अलबत्ता जो भी पेश आए उसकी जिम्मेदार आप हैं। तरह ने बेटी, तुम कुछ नहीं कहोगी?
ڈاکٹر آبدی نے کہا کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ بعض تلخ واقعات کا سامنا کرنا پڑا ہے تو انہیں اپنے دماغ سے مٹانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیے کہ آپ کی تلخ یادیں دور پھینکنے کی چیز نہیں ہیں، بلکہ ایسے بلند و بالا درخت ہیں جو آپ کی زندگی میں باقی رہیں گے۔ مثال کے طور پر، میں خود کئی برسوں سے ڈرائیونگ نہیں کر رہا تھا۔ اس کی وجہ ایک تلخ حادثہ تھا جو چند سال پہلے میرے ساتھ پیش آیا تھا، اسی وجہ سے میں نے ڈرائیونگ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن آج برسوں کے بعد میں نے دوبارہ ڈرائیونگ کی ہے۔ میں جب بھی اپنی زندگی پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے اس میں بہت سے تلخ واقعات نظر آتے ہیں، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں امید ہی سے سہارا ملتا ہے۔ ہمیں انتظار کرنا سیکھنا چاہیے۔ ایک معروف جملہ ہے، کسی دن کسی جگہ کسی وقت صبر کرو، صبر کرو اور صبر کرو۔
میوزک۔
امی کہاں ہیں؟
تم تو انہیں جانتی ہو، وہ ثابت کرنا چاہتی تھیں کہ میں نے گاڑی بہت تیز چلائی ہے جس سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ ایئرپورٹ میں ایمرجنسی روم میں گئی ہیں گولیاں اور سیرپ لینے۔ تم کیا سن رہی تھی؟
ریڈیو۔
جانتی ہو، میں اور تمہاری امی کبھی کبھی بحث کر لیتے ہیں اور کبھی کبھی غصے میں بھی آ جاتے ہیں، لیکن ہم دونوں جانتے ہیں کہ ایک دوسرے کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتے۔
میں نے ہمیشہ یہ چاہا کہ کاش مجھے بھی آپ جیسا شوہر ملتا۔
تمہیں اپنا شریک زندگی خود ڈھونڈنا ہوگا، البتہ میرے خیال میں تم نے ڈھونڈ لیا ہے، لیکن اقرار نہیں کر رہی ہو۔
البتہ واقعات کے اتفاقی ہونے کے بارے میں، ان صاحب کے تصور کا منشا زندگی کے بارے میں ان کا نقطہ نظر ہے۔ ہمیں سب سے پہلے زندگی کے بارے میں اپنی نظر بدلنی ہوگی اور پھر ہم بات کر سکتے ہیں۔
ڈاکٹر صاحب، آپ کے شکر گزار ہیں۔ خواتین اور حضرات، ہم آپ کی آواز سننے کے منتظر ہیں، براہ مہربانی اپنے پروگرام سے رابطہ کریں۔
آپ ہر رات اس وقت تک جاگتے رہتے ہیں؟
جی ہاں، مجبوری ہے۔
نیند کے نامنظم اوقات دماغ کے خلیوں کے خاتمے کا سبب بنتے ہیں۔
بہرحال ہر ایک کا اپنا کام ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبہ۔
کسی خاتون کا فون ہے بھائی آپ کے لیے۔
السلام علیکم محترمہ، ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ نے ہمارے پروگرام سے رابطہ کیا۔
السلام علیکم،
آپ کون سا مسئلہ ہمارے پروگرام میں پیش کرنا چاہتی ہیں؟
مجھے آپ کے پروگرام میں شرکت کر کے خوشی ہو رہی ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میں نے راستے میں ریڈیو چلایا تو آپ کا پروگرام چل رہا تھا، میں نے مبارکباد پیش کرنے کے لیے آپ کو فون کیا ہے۔
جی، تو پھر آپ اپنا مسئلہ ہمیں نہیں بتائیں گی؟
کیوں نہیں، بعض اوقات انسان کی تلخ یادیں سبب بنتی ہیں کہ انسان ڈرپوک کو محتاط ہو جائے۔ ایک دوست نے مجھ سے کہا تھا کہ جو آدمی امید کا دامن نہیں چھوڑتا وہ بہادر بن جاتا ہے۔ میں سوچتی ہوں میرے دوست نے سچ کہا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے کہ اکیلا انسان تلخ یادوں کو پیچھے چھوڑ سکے۔ اس کام کے لیے اسے ایک ساتھی کی ضرورت ہوگی۔ ہم سب کو ایک ہمدم کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ہو۔
آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔
ترانہ،
السلام علیکم۔
تم یہاں کیا کر رہی ہو؟
میں نہیں گئی۔
کیا تم سیکیورٹی گیٹ سے آگے نہیں بڑھ گئی تھی؟ کیا ہم نے تمہارے ساتھ خدا حافظی نہیں کی تھی؟
جی، میں لوٹ آئی۔
میں مداخلت نہیں کروں گا، آپ تو شاہد ہیں ہم لوگ ساتھ میں واپس آئے، اس نے خود ہی فیصلہ کیا ہے۔
میں خود واپس آئی ہوں امی۔ میں
ترانہ،
मैंने अब तक तुम्हारे साथ रवादारी से काम लिया था और तुम्हें नहीं बताया था कि मैं तुम्हारे और उस लड़की की शादी से मुखालिफ हूँ।
क्यों?
वो हम लोगों के बराबर नहीं है।
अलबत्त शुकुफा साहिबा, मैं भी आपके घराने के बराबर नहीं था। आप जनरल साहब की बेटी थी और मैं एक लाउबाली आशिक नौजवान।
उसने एक बार कबूल किया है, जरूरी नहीं है फिर कबूल करे।
अम्मी आप जल्दी में फैसला कर रही हैं।
बेटी तुम्हें एक मरतबा जख्म खा चुकी है, अपनी आंखें खोलो।
इस मरतबा मुझे शक नहीं है कि ये फैसला ठीक है।
ठीक है? तुम खुद ही जिम्मेदार हो। वो इंसान जो दो मरतबा गलती करता है वो बदकिस्मत नहीं है, अहमक है। मैंने अब तक बर्दाश्त किया है और तुमसे तुम्हारी हालत की वजह से कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन अब के बाद मुझसे कोई बहस नहीं करना और मुझसे कोई उम्मीद मत रखना।
मैं मुदाखलत नहीं करूंगा।
मेरी जिंदगी का शेराजा बिखर रहा है हाजिया खानम। हम लोग हर रात उनके बहन के बारे में झगड़ा करते हैं। मैं अब अपने घर में अपने शोहर की बहन को बर्दाश्त नहीं कर सकती।
तुम्हारा घर तुम्हारे शोहर का घर भी तो है।
खुदा
हाफिज बीबी, खुदा हाफिज।
लेकिन उनके बहन का घर तो नहीं है, उसने एक बुरे आदमी से शादी कर ली थी, अब उससे तलाक ले लिया, मुझे भुगतना चाहिए क्या?
कुछ दिन और अपने शोहर की वजह से उसको बर्दाश्त क्यों नहीं कर लेती?
जी 3 महीने से बर्दाश्त कर रही हूँ, अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। झूठ बोलती है, हर चीज की टो में रहती है, उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया है।
उसे समझने की कोशिश करो, इन हालात में कोई भी होता तो ऐसा ही करता, झूठ बोलता, गलतियां करता।
उसके हालात को समझना मेरा काम नहीं है। मैं अगर अपनी जिंदगी चला लूं तो बहुत बड़ा काम होगा। आप ही बताएं मैं क्या करूं आखिर, आप ही कोई मशवरा दें।
मैं क्या बताऊं बेटी, तुम्हारे सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, माफ करना।
सलामुअलैकुम।
वालेकुम सलाम। मैं तो डर गई।
डरने की कोई बात नहीं है, मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लेके आया हूँ। मैंने कहा आपके पास आके बताऊँ, इतनी बुरी खबरों के बाद मैंने कहा कि आके खुद बताऊँ।
खैर है इंशाल्लाह, क्या बात है?
बात यह है कि तराना साहिबा नहीं गई, तेहरान में है।
सच?
कल रात मेरा प्रोग्राम था, अचानक उन्होंने प्रोग्राम में फ़ोन किया, उसके बाद मैंने उनसे फ़ोन पर बात की, आज रात उनके घर जाएंगे।
आज रात?
अम्मी अब ना ना लाएं, हम लोगों ने जब भी टाल मटोल किया है काम ख़राब हो गया है, अब मैंने फैसला कर ही लिया है, बहादुरी से काम लिया है।
मुबारक हो बेटा इंशाल्लाह।
शुक्रिया। अम्मी आपकी तबीयत ठीक है?
हाँ बिल्कुल।
मुझे देखिए, क्या बात है?
जानते हो इस्माइल, मुझे नाहिद के हालात पर ज्यादा सोचना चाहिए था। मेरे ख्याल में मैंने उजलत में फैसला किया है बेटा।
उफ़ो, फिर हम लोग जीरो पॉइंट पर आ गए।
जरा बताओ, आज रात हम रिश्ता मांगने जाएंगे, तुम्हारे पास इससे अच्छे कपड़े भी हैं?
मैंने अपना सूट ड्राई क्लीनिंग के लिए दिया है।
बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो तुमको बेटा।
मैंने उन्हें ये नहीं दी। मुर्तजा साहब को ये अच्छे लगते थे सब,
खुदा उनकी मगफिरत करे, कहते थे जर्द रंग अच्छा है क्योंकि ये दोनों के लिए सही है।
उन्हें तो मालूम भी नहीं हो सका कि बेटा है या बेटी।
नानी अम्मी, मैं सुबह से बार बार फोन कर रही हूँ, जवाब ही नहीं दे रहा।
शाम के वक्त आ जाएगा। जब उसे भूख लगेगी तो आ जाएगा, तुम परेशान मत हो।
मैं परेशान हूं, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा बच्चा मर चुका है? आप कह रही थी उसका जनाजा देखा है।
मैंने कहा था कि करम फावड़े से कब्र खोदना चाहता है लाश निकालने के लिए। मैंने उसका कफन देखा था। उसने पूछा लाश निकाले तो मेरा दिल नहीं माना।
अगर मेरा बच्चा जिंदा है तो फिर ये करम बातें क्यों बना रहा है? मेरा बच्चा कहाँ हो सकता है? कौन उसे दूध पिला रहा है? कहीं बीमार तो नहीं हो गया? कहीं उन लोगों के दिल में वो घर तो नहीं कर गया और मुझे वापस ना दे?
इतनी मनहूस बातें ना करो। आज रात जब वो आएगा तो मैं उसे माम हुसैन की कसम देकर पूछूंगी। उससे ये कहूंगी कि हमें दाई के पास ले चले।
मेरी बर्दाश्त से बाहर, मेरी बर्दाश्त से बाहर। तेवरियां क्यों चढ़ी नहीं है?
ना चढ़ी हो। मेरी माँ को जब से मालूम हुआ है कि तुमसे शादी कर रहा हूँ, घर से भगा दिया है। गली कूचों में आवारा हो चुका हूँ।
मुझसे क्या मतलब? मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे?
इसलिए कि बार बार फोन करके पूछती हो कि मेरा बच्चा कहाँ है। एक मरतबा भी तुमने मेरा हाल पूछा है?
जब तक मेरे बच्चे को नहीं ले आओगे कुछ भी अहम नहीं।
मेरी माँ को हक पहुँचता है। तुम्हें मेरे ऊपर जरा बराबर भी एतमाद नहीं है। मैं बेचारा हो चुका हूँ। तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा हुआ है। बच्चा तुम्हें दूध आके दोबारा भाग जाओ। जब तक मेरी बीवी नहीं बनती बच्चे का नाम नहीं लेना।
ख्वाब देखती रहो
तो बैठकर बच्चे का इंतजार करो।
नहीं नहीं नहीं, मुझसे गलती होगी, मुझसे गलती हो गई। मैं मुंह बंद कर लूंगी। बैठो बैठो, खाना खा लो, बैठो। माँ नहीं होना के समझ सको। मैं हर दिन जिंदा होती हूँ, मरती हूँ, मर रही हूँ मैं। मुझे क्यों मारना चाहते हो?
नाहिद साहिबा, मैंने कहा रो नहीं। मैं तुम्हारे लिए बच्चा ले आऊंगा, मैं उसका अचार थोड़ी डालूंगा।
तुम उसे कहाँ ले गए हो कि लेकर आओगे?
मारुख ने उसे तेहरान में एक अच्छे घराने को बेच दिया है। मैं उसे ढूंढ रहा हूं, लेकिन अगर सच पूछो तो मैं दिल लगाकर उन्हें नहीं ढूंढ रहा हूं, सही तरह से नहीं ढूंढ रहा। थक जाता हूं, छोड़ देता हूं, ना उम्मीद हो जाता हूं।
लानत हो तुम पर। उठो बेटी, उठो, खुद को संभालो। तुम्हारा दिल नहीं चाहता? हाँ, मैं जब पुलिस में रिपोर्ट लिखाऊंगी ना तो तुम्हारा दिल चाहने लगेगा उल्लू के फटके।
अरे जा।
जाहिल कहीं के।
अगर आप गई तो मैं खुद को आग लगा दूंगी।
अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो बच्चे को भूल जाओ।
खुदा से डरो, बताऊंगी मैं तुम्हें।
जाओ बुढ़िया जा।
करम,
नाहिद,
करम। जब तुम कहोगे मैं तैयार हूं।
हराम खोर कहीं का।
मैं सोच भी नहीं सकता ये लोग रजिस्ट्रार के दफ्तर में निकाह के लिए तैयार होंगे।
बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन काश वसूख साहिबा भी होती तो हम लोग पूरी बात कर लेते।
अब तो कती हो गए हैं ना, उनके वालिद दोनों की तरफ से बात कर रहे थे।
यूं तो ठीक है, लेकिन अक्स से पहले हमें उनसे मिलना चाहिए ना, आपस में बातचीत होना जरूरी है।
जी लेकिन अब तो टाइम नहीं बचा है, कुछ दिनों के बाद निकाह है।
कल ही चलते हैं, कल तो कहीं नहीं गया ना।
मैं बताना भूल गया, तराना की नानी अस्पताल में एडमिट है। तराना की वालदा कुछ दिनों से उनके पास अस्पताल में है।
खुदा सेहत दे। अच्छा तो हम लोग अस्पताल चले जाएंगे, इस तरह इयादत का सवाब भी मिल जाएगा और वसूख साहिबा से भी बात कर लेंगे।
अम्मी मैं सोचता हूँ इन बातों के लिए अस्पताल मुनासिब जगह नहीं है, शायद उन्हें यह भी पसंद ना आए कि हम लोग उनकी इयादत को आए।
इस्माइल, तराना की नानी जान अस्पताल में एडमिट नहीं है ना?
नहीं।
तो फिर तुम क्यों मुझसे झूठ बोले?
ताकि काम जल्दी हो सके। आप नहीं आती हैं, अगर आपको पता चलता तो आप नहीं आती।
जो जिंदगी झूठ से शुरू हो, क्या सोचते हो उसका अंजाम क्या होगा?
मुझ पर बहुत ज्यादा दबाव है, माफ कीजिएगा।
उसकी माँ क्यों मुखालिफ है?
वो सोचते हैं कि मैं एक अफसरदा आदमी हूं जिसकी बीवी मर चुकी है और अब मैं उनकी बेटी से शादी करके उसे भी हलाक कर दूंगा।
तुमने उनसे बात करने की कोशिश की?
जी नहीं।
तो बात करना चाहते हो?
मैं ना गुस्सर हूं ना ही अफसरदा, और इस मसले के लिए मैं जरूरी नहीं समझता किसी को वजाहत पेश करूं और इत्मीनान दिलाऊं। मैं सोचता हूँ वक्त गुजरने के साथ साथ ये मसला हल हो जाएगा। वो आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे कि मेरे बारे में गलत सोच रही। मेरे ख्याल में वो निकाह में भी नहीं आएंगी।
अच्छा, इस तरह तो काम नहीं चल सकता बेटा।
देखिए, तराना ने कहा है वो अपनी माँ से बात करेंगी, मुझे उम्मीद है कि राजी हो जाए।
ठीक है, अगर राजी ना हुई तो मैं उनसे बात करूंगी। ठीक है,
अगर राजी ना हुई तो मैं खुद उनसे बात करूंगा। आप परेशान ना हो, मैं खुद हल कर दूंगा।
आप इत्मीनान रखें, बहुत मजबूत और अच्छे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपकी तफसीलात का बहुत बहुत शुक्रिया।
कोई बात नहीं, ये बहुत खूबसूरत भी है।
बहुत बहुत शुक्रिया, माफ कीजिएगा, ये हमारा पोता बहुत शैतान है,
समंदर भी है,
कोई बात नहीं, हमारे बस
में ही अभी आती हूं।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं,
पानी के लिए नहर, पानी के लिए।
एक्सक्यूज मी भाई साहब, आप यहाँ सिगरेट नहीं पी सकते, माफ कीजिएगा।
पहले तो पी सकते थे, मैं यहाँ पर 1.5 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ।
मैंने मकसूदी साहब को इत्तला दे दी है, अगर आपका काम बहुत जरूरी था तो आप उनको एक फोन कर देते।
बहुत अच्छे, सब कुछ आपके सुपुर्द कर दिया है, क्या आप उनके करतूतों से वाकिफ हैं या नहीं?
क्या कह रहे हैं, करतूत क्या होते? ये हमारी दुकान है और मैं एक सेल्स पर्सन।
बहुत अच्छे, सेल्स पर्सन को किसी बात की खबर ही नहीं, मकसूदी के लिए यही सूरत हाल आइडियल है।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
क्यों मुझे यहाँ आने के लिए तुम्हें फोन करना पड़ेगा? मैं खुद नहीं आ सकता।
तुमने इतने दिनों सब्र किया, कुछ और सब्र कर लेते, मैं तुम्हारा पैसा दे देता। ये लो, ये लो।
बस यही
बहरोज मेरे अच्छे भाई, अगले हफ्ते तक अगर तुम्हारे पैसे अदा ना हुए तो दुकान पर आकर शोर मचा देना, ठीक है ना?
तुम परेशान कर रहे हो।
क्या तुम परेशान कर रहे हो? हमने ये बात हरगिज तय नहीं की थी, तुम रोज बरोज सामान महंगा कर रहे हो।
तो मुझे दौड़ाना चाहते हो?
यहाँ बहरोज भाई, कौन था?
भाई ठीक है,
खुदा हाफिज।
जाम जाम
इस बच्चे को नीचे उतारो भाई, वो पलंग खराब हो जाएगा।
मैंने मैडम को बता दिया था कि हमारा पोता बहुत शैतान है।
तो आप अपने पोते की तरबियत करें, ना कि उसे हर काम करने की इजाजत दें।
अरे भाई, अगर नहीं बेचना है तो बताइए, आप क्यों परेशान कर रहे हैं, बेइज्जत करते हैं दूसरों को। अभी इस दुकान पर कभी नहीं आएंगे।
जूते
जाओ लेके, जल्दी लेके, जल्दी बेटा जाओ।
मोहतरम, आप कुछ कहती क्यों नहीं? बेवकूफ समझता है कि सारी दुनिया उसकी मकरूज है।
मकसूदी साहब, ये आदमी कौन था?
पहले यहाँ काम करता था, कुछ मसाइल पेश आ गए थे, उसे निकाल दिया गया। मरहूम हाजी मुर्तजा ने इन तमाम बरसों में सिर्फ उसी को निकाला था। आप जरा सोचें वो कैसा रहा होगा, कितना मक्कार आदमी रहा होगा उस वक्त।
आपसे क्या मांग रहा था?
जो एटिक धो जाए और ज्यादा नशा करे तो उसे क्या चाहिए, पैसा?
यानी नशा ही था। लेकिन क्या आपने उसे निकाला नहीं था? वो पैसे क्यों मांग रहा था?
मोहतरमा, इज्जत बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ देना पड़ता है। वो ये भी समझ गया, एक दो मरतब आया और गिरियाजारी करने लगा, लेकिन मरहूम मुर्तजा ने उसे दोबारा नहीं रखा, लेकिन हर बार उसकी जेब में कुछ पैसे जरूर डाल दिए।
फिर तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये यूं ही ब्लैकमेल करता रहेगा।
जी नहीं मोहतरमा, मैं कोई हाजी रऊफ तो हूँ नहीं, मैं उसके पर कतर दूंगा। मैंने उससे कहा है कि अगर दोबारा यहाँ दिखाई दिया तो मैं आओ देखूंगा नताओ उसे आदमी बना दूंगा। आप परेशान ना हो, मैं ऐसे लोगों को ठीक करना जानता हूँ। आप परेशान ना हो, मैं उसकी अकल 25 कर दूंगा। आपको कोई काम तो नहीं?
नहीं, बहुत शुक्रिया।
मुझे कई जगहों पर जाना है, हो सकता है आ ना पाऊँ। अगर कोई बात हो तो मुझे फोन कर लीजिएगा।
जी जरूर।
खुदा हाफिज।
वालेकुम सलाम फरूक।
अभी मैं इस्माइल से अभी तुम्हारा जिक्र खैर कर रही थी।
इंशाल्लाह के सब खैर है।
हाँ खैर है भाई, हमारे बेटे ने फैसला कर लिया है कि वो अब शादी करेगा।
मुबारक हो आपको।
इसी जुमेरात को अक्त की तकरीब है, दोनों जाकर रजिस्ट्रार के यहाँ अक्त पढ़वा लेंगे, उसके बाद खाना खाने रेस्टोरेंट जाएंगे।
इंशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे।
मैं ये कह रही थी कि अगर तुम्हें जहमत ना हो तो अक्त की तकरीब में तुम भी आ जाओ।
जी जरूर, शुक्रिया कि आपने हमें याद रखा।
सारा को जरूर लाना, समझी, मुझे बहुत याद आती है।
जी जरूर।
इस्माइल से कहूंगी, एड्रेस तुम्हें एसएमएस कर देगा।
बहुत शुक्रिया।
कोई काम था जो तुमने फोन किया था?
नहीं, सिर्फ आपकी खैरियत जानना चाहती थी। इस्माइल साहब को सलाम कहिएगा।
खुश रहो, जीती रहो बेटी, मेरी सारा बेटी को बहुत
प्यार करना। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज। मुझे यकीन है वो कोई घपला कर रहे हैं।
क्या कर रहे हैं?
देखो, हिसाब किताब रसीदों के साथ सही नहीं बैठ रहा है। मैंने रसीदों का जो हिसाब किया तो 3 महीनों में 10 लाख तमान का कोई पता नहीं चल रहा है।
10 लाख फरूख? ओहो, अब जाने भी दो फरूख, अभी तो तुम्हारी जिंदगी में सुकून आया है, सारा सुकून गारत मत करना प्लीज।
काश मैं इन चीजों से वाकिफ ही ना होती।
तो ऐसा दिखाओ कि तुम्हें नहीं पता है।
ये नामुमकिन है, मैंने हाजिया साहिबा का नमक खाया है।
तो मकसूदी साहब का भी तो नमक खाया है तुमने, क्या फर्क करता है?
अगर मकसूदी के हाथ से मुझे तनख्वाह मिलती तो मैं यहाँ से चली जाती और मुड़ कर ना देखती। मैंने सारी मुसीबतें हलाल रोजी कमाने के लिए झेली हैं।
ठीक है, जाके बता दो, तुम्हें भी सुकून मिल जाएगा, पता भी चल जाएगा कि क्या करना है।
मैं कहने ही वाली थी, अचानक हाजिया साहिबा ने कहा कि इस्माइल की शादी है।
ठीक है, तो फिर शादी के बाद बता देना, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है?
नामुमकिन है, मकसूदी ने भी मुझ पर बहुत एहसान किया है।
फरूख, पैसों की वजह से लोग एक दूसरे की जान भी ले लेते हैं, ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
ये कैसा मजाक है, क्या कहना चाहती थी?
लगता है दूसरों को मेरी जिंदगी के बारे में मुझसे ज्यादा पता है।
काश के गम होता।
ठहरो जरा, ठहरो,
कह रहा हूँ ठहरो।
इससे ज्यादा अगर आपने मुझे परेशान किया तो आपको बता दूंगी मैं।
बहराम
क्यों मार रहे बाबा जान मुझे? जिसको वलीमा चाहिए वो तालियां बजाए।
एक बार मुझसे पूछने नहीं आया कि तुम्हारी मुश्किल क्या है।
मुबारक हो।
ये मसला खत्म कर दो, अगर सचमुच उसे चाहते हो तो खत्म कर दो ये मसला।
सुनो माहरो, अपनी जिंदगी चाहती हो तो इस बच्चे को वापस ले आओ,